नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबलवानी से दिनकर पातुकर। भारत जोड़ो यात्रा का आगमन मध्य प्रदेश में हो चुका है और यात्रा में विश्वविख्यात गांधीवादी विचारक राजगोपाल जी भी पहुंचे और वह यात्रा से सीधे रूबरू होने जा रहे छिंदवाड़ा मोबलवानी के साथ। नमस्कार भाई साहब।
नमस्ते नमस्ते दिनकर भाई जी।
हाँ भाई साहब, हम ये जानना चाह रहे कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जो जोड़ो यात्रा जो निकली है, इस संबंध में छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं को आप बताने का प्रयास कीजिए कि यात्रा क्यों निकालनी पड़ी और इसके पीछे क्या कारण है।
जी, ये यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा है, तो इस कारण से इस यात्रा में किसी पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस यात्रा में सिर्फ हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रध्वज है, उसको लेके सब लोग चल रहे हैं और इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। अब इसके पीछे कारण यही है कि पिछले दिनों में देश में जिस प्रकार का माहौल बना है, खास करके नफरत का जो माहौल बना है, नफरत कहें विरोध कहें, कि जो दिल को दिल से जोड़ने वाले जो प्रक्रिया है, भाषा भेष सब भूल के एक भारत माता के हम सब लाल ये जो नारा है, ये कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि ये देश ऐसा है कि इसमें विभिन्नता में एकता है। अगर विभिन्नता नष्ट हो गया तो फिर देश का कोई बहुत ज्यादा सुंदरता नहीं रहेगा। ये तो ये कारण है कि इस देश में जोड़ कैसे बनाया जाए। अब जैसे कल जो मेरी चर्चा हो रहा था राहुल गांधी जी से, उसमें मैं और हम लोग इस बात पर सहमत हो रहे थे कि हिंसा बढ़ रही है। हिंसा हो सकता है कि धर्म के कारण या महिलाओं के साथ अत्याचार, गाय के कारण, धीरे धीरे हमारे देश में हिंसा बढ़ रही है और हिंसा और तनाव मुक्त देश का विकास होना संभव नहीं है। तो जिस देश में हिंसा है, तो हिंसा को समाप्त करने के लिए एक व्यापक माहौल बनाने की जरूरत है कि हम सब प्यार से रहें, मिलके रहें, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से न लड़ें। तो एकता बहुत जरूरी है। इस कारण से हमारा भी संगठन का नाम एकता परिषद है। हम चाहते हैं कि देश में जाति धर्म और सबके बीच में एकता हो और मिलके चलने वाला एक देश का जो मिसाल है, हम दुनिया को कायम कर सकें। इसी कारण से महात्मा गांधी ने अपने आश्रम प्रार्थना में हमेशा सर्व धर्मों का प्रार्थना किया। उन्होंने कोई हिंदू धर्म का प्रार्थना या ईसाई धर्म का प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना अपने आश्रम में शुरू किया ताकि हर धर्म को ये महसूस हो कि इस देश में उनका भी उतना ही स्वागत है, बाकी लोगों का जितना स्वागत है। तो उस दृष्टि से भारत जोड़ो यात्रा इस बात को कहने का कोशिश कर रहा है कि इस देश में युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या है, गरीबों के सामने गरीबी की समस्या है। इन मुद्दों से लड़ने के बदले अगर हम जाति धर्म के लड़ाई में हिंसा को फैलाने में लग जाए तो देश का पूरा डायरेक्शन बदल जाएगा। उससे युवाओं को नुकसान होगा, अगली पीढ़ी को जो है, अगली पीढ़ी को जो काम करके अपने परिवार पालना है, उसको हिंसा के रास्ते में, धर्मांतरता के रास्ते में अगर हम धकेल देंगे तो नुकसान होगा। इसलिए ये यात्रा मुख्य रूप से देश को जोड़ने का, देशवासियों के मन में प्रेम बढ़ाने का एक प्रयास है। तो इसलिए इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं और मैं भी उसमें शामिल हुआ हूँ।
भाई साहब, आप इस यात्रा में किस जगह पर शामिल हुए?
तो ये खंडवा जिला है भारतपुर में, तो मैं कल जहाँ मध्य प्रदेश में प्रवेश किए हैं वहां से साथ चले हैं और यहाँ से चलते चलते हम लोग इंदौर जाएंगे, इंदौर से फिर उज्जैन की ओर जाएंगे, उज्जैन से पूर्व फिर राजस्थान का जो कोटा है उस रास्ते में उनको विदा करेंगे, तो दूसरे प्रांत में प्रवेश कर लेगा। तो ये 13 दिन की यात्रा मध्य प्रदेश में है और वो बहुत जबरदस्त तरीके से कल स्वागत हुआ और सभी लोग, सभी प्रकार के लोग इकट्ठे हुए, सभी धर्म के लोग इकट्ठे हुए, सभी महिला पुरुष इकट्ठे हुए, तो बहुत भव्य स्वागत हुआ है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के प्रवेश में और यात्रा आगे बढ़ रहा है। आज ये और 25-30 किलोमीटर पार करेंगे।
हाँ भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो दांडी यात्रा निकाली थी, आज वो इस देश में भारत जोड़ो यात्रा ने उसकी याद ताजा कर दी, ऐसा लोगों का मानना है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे?
तो ये है कि देखो, कोई भी विचार को लोगों तक पहुंचाना हो, मैं तो जिंदगी में कई बार पदयात्रा किया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि आप एयर कंडीशन कमरों में रह के हेलीकॉप्टर में यात्रा करके भाषण देके कोई भी नेतृत्व इस देश के नब्ज को नहीं समझ पाएंगे। अगर देश के नब्ज को समझना है तो उतर पड़ना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, लोगों से संवाद करना होगा, लोगों को प्यार देना होगा, लोगों को गड़े लगाना होगा। तो महात्मा गांधी ने एक वर्ष पूरे देश में यात्रा की इस देश को समझने के लिए, और उसके बाद फिर दांडी यात्रा की, कई प्रकार की यात्राएं की, तो वो लोगों को परखा, इसलिए वो नेतृत्व दे सका। तो आज भी राहुल गांधी जैसे लोगों के सामने चुनौती है कि अगर वो उतर के लोगों को पहचानेंगे, लोगों को गले लगाएंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे, तो ये परिवर्तन होगा। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने की यात्रा में राहुल गांधी में काफी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वे स्वयं चीजों को गहराई से समझने लगे हैं। उनके भाषणों में आपको समझ में आएगा कि आप वो और गहराई से बातों को रख रहे हैं, और जैसे आदिवासियों की समस्या को और गहराई से समझने लगे हैं, विस्थापन की समस्या को गहराई से समझने लगे हैं, पलायन की समस्या को गहराई से समझने लगे हैं, मजदूरों की समस्या को, महिलाओं की समस्या को। कल जैसे मैंने कहा कि मेरे चर्चा में मैंने उनको कहा, देखो अगर दारू चाहिए गाँव को, ये तरफ हम कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करना है, तो महिलाओं को सशक्त करना हो तो दारू का दुकान बंद करना पड़ेगा, दारू पी के महिलाओं को पीट रहे हैं, अब महिला सशक्तिकरण के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि दारू चाहिए नहीं चाहिए ग्राम सभा तय करेगा, अगर दारू पी के हमको बर्बाद होना है ये मुख्यमंत्री क्यों तय करेगा भोपाल में बैठ के, या प्रधानमंत्री क्यों तय करेगा दिल्ली में बैठ के, वो तो गाँव वाले तय करेंगे कि हमारे गाँव में स्कूल चाहिए, दारू का दुकान चाहिए, राशन का दुकान चाहिए, दारू का दुकान चाहिए। ये तो हम जबरदस्ती लोगों को दारू पिला पिला के बीमार कर रहे हैं, फिर हम घोषणा कर रहे हैं कि सबको हम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, अस्पताल में पैसा देंगे वगैरह, ये जो ड्रामा है। तो उन्होंने उस बात को समझा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये निर्णय लेने, इतने निर्णय लेने की क्षमता गाँव में नहीं है, तो फिर क्या क्षमता हमने पैदा की इतने वर्षों में। तो उस प्रकार की बातों को गहराई से समझेंगे तो जब दिल्ली में बैठेंगे तब भी कोई निर्णय लेगा तो महिलाओं के हित में लेगा, गरीबों के हित में होगा, पलायन करने वाले लोगों के हित में होगा। देखिए कि लाखों लोग वापस आए गांव गांव, लेकिन वो लोग कौन है, जिन लोगों को हमने अपने उनका जमीन छीन के उनको सबको विस्थापित कर दिया था, वापस आके रहेंगे कहाँ? तो ये जो गहराई है गरीबों की समस्या का, ये भाषण से ठीक होने वाला नहीं है, ये नजदीक से समझना है। और कभी अपने मौका मिल जाए निर्णय लेने का, उनके हित में निर्णय लेने का। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा, जब कभी तुम निर्णय लो तो अंधे व्यक्ति को मन में रख के निर्णय लो। तो अंधे व्यक्ति को पहचानने की यात्रा है। तो ये बढ़िया आपने कहा दिनकर भाई की दांडी यात्रा का याद दिलाएगा, और प्रकार के कई अच्छे काम का याद दिलाएगा, जब लोग उतर के लोगों से मिलते हुए समस्याओं को समझ के एक नए दृष्टि बनाते हैं। ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता इस देश में, हेलीकॉप्टर में घूम के भाषण देने वाले नेतृत्व से इस देश का भला होने वाला नहीं है।
भाई साहब, आपसे अंतिम प्रश्न
जी,
कटरा में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी मध्यप्रदेश में जैसे यात्रा की आगमन हुआ वहां से साथ में आए, और प्रियंका गांधी जी भी इस यात्रा में शामिल हुई, तो उन्होंने प्रदेशवासियों को क्या संदेश दिया, आप हमारे मोबाइल वाणी के श्रोताओं को बताने का प्रयास कीजिए।
जी, उनका संदेश कल उन्होंने अपने भाषण में कहा, कल कमलनाथ जी ने भाषण नहीं दिया, प्रियंका जी आज पहुंचेगी, कल नहीं थे, लेकिन कल राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि एक तो पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है उसमें जो भी हम औजार खड़ा करते हैं, जो भी हम सिस्टम खड़ा करते हैं, वो कोर्ट का सिस्टम हो, इलेक्शन कमीशन का सिस्टम हो, या और प्रकार का सिस्टम हो, ये सब क्यों खड़ा करते हैं? ये सब इसलिए खड़ा करते हैं लोगों की भला करें, उसको सरकार इस्तेमाल करें दूसरों के विरोध में, विपक्षियों के विरोध में, उसके लिए खड़ा नहीं करते। तो एक तो ये है कि प्रजातंत्र के जो 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 खंभे हैं वो मीडिया भी उसमें शामिल है। प्रजातंत्र के खंभे जब किसी एक पक्ष में चला जाता है, बाकी लोगों को सजा देने का काम शुरू कर देता, तो उसे प्रजातंत्र को नुकसान होगा। ये बात युवाओं को समझाने का कोशिश किया। फिर उन्होंने ये समझाने का कोशिश किया कि डिमोनिटाइजेशन और जीएसटी इस प्रकार की चीजों से ताकतवर लोगों का ताकत बड़ा होगा, बड़े लोगों को धन और ज्यादा कमाने का मौका मिला होगा, लेकिन गरीब लोग जो 10 रुपया अपने थकिया के नीचे रख के सोने वाले लोग हैं, उनके हाथ से तो सब कुछ निकल गया और कोविड और ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाया। तो वो कह रहे थे कि ये जो छोटे छोटे धंधे हैं देश में जिसके सहारे लोग जी रहे हैं, वो खेती है, छोटा दुकान है, छोटे इंडस्ट्री है, इनको सबको खत्म करके कुछ अडानी अंबानी को पालने से कोई फायदा नहीं होगा। वो सब हम भी समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहा, तो मुझे लगता है कि वो युवाओं के बारे में चिंतित है, वो इस देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लेकर चिंतित है। ये अच्छी बात है, ऐसी बात अगर किसी और पार्टी के लोग कहेंगे तो भी मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन सोचने का जो तरीका है कि वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, कोई भी हो, सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि हम इस देश के अंधे व्यक्ति को कैसे मदद करें, इस देश के पीड़ित वंचित लोगों को कैसे सशक्त बनाएं, इस देश के महिलाओं को ताकतवर कैसे बनाएं, इस देश के युवाओं को ज्यादा रोजगार का अवसर कैसे पैदा करें। तो उस प्रकार के संदेश वो दे रहे हैं अपने अपने भाषणों में, और कमलनाथ जी भी थे, दिग्विजय सिंह जी भी थे। अच्छा लगा कि पूरे पार्टी के लोग इकट्ठे होकर एक विशेष बात को कह रहे हैं, जो सुनने से ऐसा लगेगा कि महात्मा गांधी ने जिस प्रकार का ग्राम स्वराज का और स्वतंत्र भारत की कल्पना की, उसके बारे में उन लोगों के मन में चिंता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि कोई भी पार्टी इस प्रकार की बातें कहें, इस दिशा में काम करें, तो उनको समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी के लोग ही तो आगे सत्ता में बैठेंगे। तो मैंने निवेदन भी किया है कि जिस प्रांतों में, जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, जहां कांग्रेस की पार्टी है वहां कम सत्ता में है, वहां कम से कम इसको करके दिखा सकते हैं, जहां नहीं है वहां इसके उसको लेके हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जहां है उसको करके दिखा सकते हैं, उस ओर अभी बढ़ना चाहिए। तो माहौल अच्छा बन रहा है दिनकर भाई इस बातों को लेके। जी
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यह थे विश्वविख्यात गांधीवादी विचारक राजगोपाल जी, जो वर्ष भर पद यात्रा करते रहते और आगामी जनवरी माह में भी यह सिहावा में गंगा सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पदयात्रा के माध्यम से सिहावा पहुंचेंगे और गंगा सत्याग्रह की स्वर्ण जयंती मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से रूबरू का जिले वासियों के लिए भारत जोड़ो यात्रा का महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया।
थैंक यू, धन्यवाद दिनकर भाई।
धन्यवाद भाई साहब।